विशेष करके राजनीतिक जो पार्टियां हैं गंदे गंदे स्लोगन दे करके हम आपको मना करते हैं कि मत दीजिए, हमारे सिर में दर्द हो जाता है। आप लोग सुनिए, आपका भी कल्याण होगा। गंदे गंदे संसार में केवल भारतीय नहीं, भारत में तो ही है, रोज लोग तरह तरह के शब्दों का कुप्रचार करते हैं। विदेशों में भी ऐसे ही शब्दों का प्रदूषण होता है। केवल पानी का ही प्रदूषण और हवा का प्रदूषण नहीं है। जैसे आप एक सरोवर में पत्थर फेंकिए तो उसमें से गोल गोल सरंगे उठती हैं और वो सरोवर के अंतिम छोर तक चारों तरफ में छूटती हैं। ऐसे वायुमंडल में भी तरंगे होती हैं। आजकल एक सेकंड में अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से बातचीत कर सकते हैं। ये ध्वनि के तरंगों पर निर्भर है। इसलिए आप जो कुछ भी शब्द बोलते हैं ध्वनि के तरंगों पर इधर उधर फैलती है। इसलिए संसार में शब्दों का प्रदूषण हवा और पानी से भी अत्यंत अधिक होती है। समुद्र की तो ये स्थिति है कि मछलियां सब मारी जा रही हैं, उसको बचाने के लिए लोग चेष्टा कर रहे हैं किंतु हो नहीं रहा, उसमें भी प्रदूषण फैल रहा है। यमुना और गंगा की तो बात ही क्या, तो शब्द की ध्वनि जो होती है ये प्रदूषण सबसे अधिक गंदा होता है, लोगों के वातावरण को एकदम दूषित कर देता है। बच्चे जन्मते हैं उस वातावरण में, उनका भी जीवन खराब हो जाता है, गंदे गंदे विचार आते हैं। इसलिए हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने, भगवान ने इसकी व्यवस्था की, इस ध्वनि को, प्रदूषण को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए हरिनाम संकीर्तन की व्यवस्था की जोर जोर से, लाउडली, खूब जोर के साथ में कुछ संकीर्तन होना चाहिए जिससे कि यह प्रदूषण समाप्त हो जाए। आज यदि ये कीर्तन विश्व भर में नहीं होता तो न जाने क्या इसकी दशा होती। अणु जो परमाणु बम फटते हैं उसकी रश्मियाँ, उसकी किरणें, आप जानते हैं हिरोशिमा और जापान में कहाँ क्या क्या हुआ, उसका उससे भी भयंकर शब्द का प्रदूषण है। हरिनाम संकीर्तन से हवा की तरंगों में ये उठ करके विश्व में चारों तरफ में फैल करके शब्द के प्रदूषण को दूर करता है, नहीं तो न जाने हमारी क्या स्थिति होती है। इस नाम में इतनी शक्ति है हरिनाम में, जो उल्टा नाम जपने पर भी, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, झूठ मत समझेंगे। यदि न्यूटन की थ्योरी न्यूटन ने आविष्कार करके कहीं लिख दिया तो वो सत्य यदि होती है तो हमारे नित्य सत्य की उपलब्धि करने वाले वैदिक ऋषि हैं, उनसे अधिक भगवान हैं, उनकी बातों पर हमको विश्वास करना, नहीं करने से चल नहीं सकता। इसलिए जो जो बातें वेद में कही गई वो सारी बातें सत्य हैं। नाम के संबंध में भी ये कलयुग संतरण उपनिषद का ये मंत्र है, इतना प्रभावशाली है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। अज्ञानी, इतना दुष्ट दुराचारी होने पर भी, ऐसा संसार का कोई पातक नहीं था जो उसने नहीं किया, कोई भी कुछ बचा नहीं रहा, और उसने अनजान में ही अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, मरते समय में बस नारायण नारायण किया, अधिक बोलने की जरूरत नहीं है। मृत्यु से तो उसी समय में उसकी रक्षा हो गई, बच गया, और फिर हरिद्वार में जाकर के शुद्ध रूप से हरिनाम का साधन कर दिया और झट बोलो वैकुंठ में चला गया। जैसे ये झूठ है, झूठ नहीं परमा सत्य है। जिस दिन आप सत्य की उपलब्धि करेंगे उस दिन आप लोग समझ सकते हैं कि नाम में कितनी शक्ति है। जीवन को, धारा को बदल देने वाला ये, उसके जीवन को सुखी और शांत बना देने वाला। आप कुछ मत कीजिए, कलयुग में केवल भगवान का नाम बिना पैसे का सवेरे शाम लीजिए, देखिए थोड़ा सा भी आपके जीवन में सुख और शांति आए। परीक्षा करके देखिए, परीक्षा करने में असफल होने पर तब हमको कहेंगे। प्रार्थना में बड़ी भारी शक्ति है, गांधी जी को तो जानते हैं ना, कैसी प्रार्थना में बल उन्होंने बदलाया, इसके पहले हमारे ऋषियों ने बदलाया। समुद्र का पानी ऐसे लेकर के राम नाम के भरोसे पर और उसको पी लिया। हनुमान जी राम का नाम लेकर के आकाश में उड़ते हैं, उनको आग हवा पानी कुछ भी नहीं कर सकती, ये नाम का बल है, इसलिए इस पर विश्वास रखें। नाम करते समय में आप लोग श्रद्धा के साथ में नाम करें, ये सारे विश्व में फैल करके सब जगत का हित करता है। जैसे घी है, आप लोग घी पी रहे हैं, कुछ खाते हैं, आपके शरीर में कुछ पुष्टि दे रहा है, किंतु उसी घी को आग में दे करके हवन करके दीजिए, उसके कण कण विश्व में सर्वत्र जा करके जितने प्रकार के दूषित चीज है उस सबको श्यामय बना देता है, शुद्ध बना देता है। उसके अलग अलग कण गाय की इसमें आग में देने हवन से उसके कण निकल करके बिखर जाते हैं विश्व में और विश्व को शांति करने वाले। यदि अधिक यज्ञ किया जाए तो समय पर वर्षा, समय पर सभी काम। इसी तरह से हरिनाम में ऐसी शक्ति आप लोग कर सकते हैं। तब इसमें एक बात है, प्याज लहसुन मांस मदिरा इत्यादि का सेवन न किया। चाय में भी विष है, आप अपनी समझते हैं स्लो पॉइजन है। प्याज में अभी अमेरिका में मैं गया, वहाँ पर अनुसंधान किया गया 21 प्रकार के स्लो पॉइजन हैं उसमें। इसलिए प्याज लू यदि पॉकेट में रहती है, प्याज लू नहीं लगता, गर्मी को शांत कर गठिया इत्यादि को दूर कर देता है, और उसको आदमी इस तरह से दवा का इस समय रोज रोज यदि खाएगा तो जरूर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये जड़ी बूटियाँ हैं, इसको देख सुन करके करना है। नाम कीर्तन करते समय में जहाँ संकीर्तन हो रहा है, जिससे विश्व का कल्याण इसके द्वारा हो रहा है, उस समय जो लोग कीर्तन जोर से कर रहे हैं उनके मुख से हरिनाम निकल रहा है, तो उनके जितने पाप भी यदि कुछ हों तो निकल करके वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं, और जो कीर्तन करने के समय में मुख बंद करते रहते हैं उनके मुखों में चले जाते हैं उनका पाप। थोड़ा समझ रहे, अभी हरिनाम कीर्तन जोर से हो रहा है, जो लोग बोलेंगे नहीं, जो बोल रहे हैं उनका पाप निकल जाएंगे, और वातावरण में मिलकर के फिर उनके शरीर में कानों में उनके मुख में चले जाएंगे जो नहीं कर रहे, और वो सब पातक उधर में चले जाएंगे, दोष चले जाएंगे, त्रुटियाँ चले जाएंगे, और उनका जो कुछ अच्छा होगा वो मिल करके आ जाएगा जो लोग हरिनाम जोर से करते हैं। इसलिए सामूहिक रूप में बड़े अच्छी तरह से सामूहिक होता है। अर्चन पूजन वंदना सबकी अपेक्षा कली काल में हरिनाम से, इसी का हमारे महाजनों ने, व्यास ने, सुखदेव गोस्वामी ने, हमारे मध्वाचार्य विश्व स्वामी रामानु, अंत में चैतन्य महाप्रभु, उनके परिकरों ने, यहाँ तक कि राजनीतिक लीडर हमारे गांधी जी ने भी मरते समय में राम राम कहकर। इसलिए भगवान के नाम से बराबर और कोई चीज़ नहीं है। अभी कीर्तन होता है, आप लोग पीछे से कीर्तन को दोहराएंगे और करेंगे। ये क्या कन्हैया आजा मेरे बाल टोली में, खूब लंबे स्वर। ध्यान माने कि क्या ध्यान करेंगे, कोई ठीक नहीं। भगवान का नाम रूप गुण लीला है, कृष्ण ही भगवत्ता की परम सीमा है। वेद उपनिषद शास्त्र गीता भागवत रामायण पुराण सभी का है। ध्यान यदि लगाना हो तो कृष्ण का ध्यान किया जाए, आराम का ध्यान किया जाए, किंतु ध्यान लगना सहज बात नहीं है। दिमाग को खाली करेंगे ध्यान लगाने की चेष्टा करें, जगत की जितनी जंजाल है सब वहीं को उपस्थित, लाखों तरह की चिंताएं इसमें आ जाएंगी। शुद्ध रूप में ध्यान होना बड़ा भारी कठिन है, विशेष कल के कलियुगों के लिए। सतयुग में कहीं संभव था जबकि चित्त शुद्ध होता। यदि कहिए हम यज्ञ करेंगे, आजकल यज्ञ लोग कराते हैं, लोगों को ठगते हैं, वेदों में यज्ञ की विधि है, किंतु वो त्रेता युग के लिए है, सतयुग के लिए यज्ञ नहीं, क्योंकि निर्लोभी यज्ञ कराने वाले जगत में बहुत कम है। शुद्ध गाय का घी मिलना बड़ा भारी कठिन है। निर्लोभी और वेदों में पारंगत यज्ञ कराने वाला वशिष्ठ जी, याज्ञवल्क्य जी जैसे लोग यज्ञ कराने वाले अब नहीं रह गए, बहुत असंभव। कोई भी शुद्ध चीज नहीं मिलेगी, शुद्ध पानी जब नहीं मिलता है, घी नहीं मिलेगी, यज्ञ कराने वाला वैसा वेदज्ञ यज्ञ को जानने वाला होता, हवत इत्यादि सब, तो वो क्या यज्ञ कराते हैं? वो पैसे की तरफ में देखते हैं कि कैसे माल लूट लिया जाए, लोगों को बेवकूफ बनाकर। इसलिए कलिकाल में ये वो भी नहीं है यज्ञ। यदि कहीं ये दान देंगे, पति कमा रहा है, पत्नी कमा रही है, बहन कमा रही है, बेटा कमा रहा है, सभी कमा रहे हैं, तभी अपना पूरा नहीं पड़ता, वो क्या दूसरों को देंगे? यदि किसी को देंगे तो किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए देंगे। आज अमेरिका किसी को देता है तो ऐसे ही नहीं देता, किसने रूप में देता है, पहले अपनी अपना स्वार्थ देख करके सब देता है। किसी गरीब का उपकार नहीं करते। संसार में इसी तरह से दान भी संभव नहीं था, कभी है ही नहीं, तो दान क्या करेंगे, अपना पूरा नहीं पड़ता। एक यही चीज है जिसमें रुके की जरूरत नहीं, वेदज्ञ ब्राह्मण की जरूरत नहीं, ध्यान करने की जरूरत नहीं, किसी चीज पवित्र होने की भी जरूरत नहीं, चित्त को समाधिस्थ करने की भी जरूरत नहीं, जो जीत रूप में है। हारमोनियम की भी जरूरत नहीं, ऐसराज की जरूरत नहीं, गले की कसरत की जरूरत नहीं, स्वर मीठा नहीं है, मोटा है, तभी कोई बात नहीं, हृदय से निकलना चाहिए। दिन में करो, रात में करो, पलंग पर बैठ कर मरते समय में, टट्टी होते समय भी कर सकते हैं। कृष्ण का एक ऐसा प्रभाव देखिए, एक आदमी बहुत रूप से अच्छी तरह से ध्यान लगा रहा है, किंतु जहां कीर्तन की ध्वनि पहुंची, दस पांच आदमी मिलकर के कीर्तन करें, वो ध्यान लगा सकेगा? नहीं लगा। यज्ञ करने बैठे हैं कोई, और दस बीस पचास आदमी, एक सौ आदमी मिलकर के हरिनाम करने लगे जोर से, वो भी नहीं होगा। मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अभी कीर्तन की ध्वनि हो रही थी, देखिए सब लोग तन में हो रहे थे, किसी की चिंता इधर उधर में गई, अपने आप चित्त को एकाग्र करके ध्यानस्थ और समाधिस्थ कर देगा ना। जगत में सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा भगवान का नाम दान है, इसके समान और कोई दान नहीं। यदि किसी को भगवान की तरफ में उसके चित्त वृत्ति को मोड़ दिया जाए, भगवान के नाम की तरफ में उसे लगा दिया जाए, और सचमुच में महापापी भी व्यक्ति हो, जैसा भी हो, यदि नाम लेने लग गया, उसको साधु व सम्बन्ध साधु समझो। इसे संसार में यदि कोई दान है तो सबसे बड़ा आजकल का ये हरिनाम दान। यदि यज्ञ भी कोई बड़ी है तो हरिनाम यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन सबसे बड़ा यज्ञ है। तप भी यदि है तो हरिनाम के समान कोई भी तप नहीं है। सहज रूप में, साधारण रूप में, सबके लिए सुलभ, दरिद्र अमीर, धनी गरीब, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, रोगी स्वस्थ, आदमी को व्यायाम करना चाहिए सवेरे कुछ न कुछ, सब लोगों को, ये इंद्रिया ठीक रहे। हरिनाम संकीर्तन करने से करताल बजाते हुए थोड़ा सा नित्य हो जाए, अपने आप व्यायाम हो गया कि नहीं हो गया? अलग से व्यायाम करने की क्या जरूरत है? अभी जिस प्रकार से कीर्तन हो रहा था और जिस प्रकार से नित्य करते हैं, अब उसमें कौन सा, उसके सारे अंग जितने हैं, प्रत्यंग हैं, अपने आप उनका व्यायाम हो जाता है, यहाँ तक कि दिमाग का भी व्यायाम हो जाता है, हृदय का भी हो जाता है, इंद्रियां अपने आप बसीभूत हो जाती है, चित्त चंचल शांत प्रशांत। सब प्रॉब्लम सब लोगों का भूल जाएगा कीर्तन करते समय। इसलिए हमारे ऋषियों ने ऐसा समझ करके हरि नाम संकीर्तन की व्यवस्था की। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौश नास्ते व नास्ते, आपको जगत में कलयुग मिले। इसलिए यदि दूसरा कोई आपको कोई उपाय बतलाता है, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, यज्ञ करो, बात नहीं सुनो। सरल रूप में जो वृद्ध हैं, लड़के हैं, विधवा हैं, सत्वा हैं, सभी लोगों के लिए, गरीब अमीर किसी भी जाति का हो, मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई कोई भी हो, सबके शास्त्रों में नाम की महिमा। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा, बारी मथे बरु हो यिकता से बरु से बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपे। चाहे अंधकार सूर्य को निगल जाए, चाहे आकाश में फूल खिल जाए, ये संभव हो सकता है, खरगोश के सिंह निकल जाए, कछुए के पीठ पर भले ही केस निकल आए, बाल हो जाए, बर्फ से आग निकल जाए, ये भी संभव हो सकता है, किंतु और भी पानी को बिलोने से भले ही घी निकल आए, कभी नहीं होता। लाख जन्म तक पानी को मंथन करो, उसमें घी नहीं आएगा। भले ही रास्ते की जो धूल है उससे तेल निकल सकता है, तुलसीदास जी कहते यह भी संभव हो सकता है, इसको असंभव नहीं मानता, किंतु यह संभव मानता हूं। बिनु हरि भजन न भवतरिय, संसार से आपका कल्याण नहीं हो सकता। बिना पैसे की इतनी बड़ी दवा की खुराक पावरफुल आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे ऋषियों ने अनुसंधान करके ये सब किया है, पूर्ण रूप में विश्वास रखेंगे। यदि मुसलमान कुरान पर विश्वास करता है, यदि अंग्रेज लोग बाइबल पर विश्वास करते हैं, अपने बच्चों को गीता बाइबल इत्यादि पढ़ाते हैं, मुसलमान लोग कुरान पढ़ाते हैं, उनको ये नमाज इत्यादि पढ़ाने के लिए शिक्षा देते हैं, केवल हिंदू ही ऐसे हैं, सनातनी ऐसे हैं, अपने धर्म में रुचि नहीं, इसलिए इनकी इतनी इनका इतना पसंद है। इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाएंगे, भगवान का नाम कराएंगे, मांस मछली इत्यादि से परहेज कराएंगे, सिखलाएंगे, आप अपने पिता को आदर करते माता का, बच्चों को सिखलाएंगे कि हम माता पिता का आदर करते हैं, तुम भी करना सीखो। जब ही आप अपने घर से शिक्षाएं नहीं देंगे, कुछ दिनों के बाद आपके बच्चे आपको नहीं मानेंगे। जिस घर में माता पिता का आदर नहीं है, उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं, कभी भी नहीं सुधर सकते, इस चीज को गांठ बांध कर रखी। महिलाएं अपने पति की सेवा करके आदर्श स्थापित करें, राम सीता जी जैसा, जैसे कि उनके बहू आए तो वैसा ही करें। यह सब शिक्षाएं घर से होनी चाहिए। पति कभी भी अपनी स्त्री को खिलौना न समझे, अपनी अर्धांगिनी समझे। जिस घर में महिलाओं का आदर नहीं होता, उनका घर नरक हो जाता है। महिलाएं भी आजकल आधुनिक शिक्षा लेकर के प्राचीन शिक्षा को भूल रही हैं। पति के घर में आकर के सास ससुर का आदर नहीं करती, बल्कि अपने माता पिता की याद करते हैं या दूसरे की। ये खबरदार नहीं होने चाहिए, ये सब चीजों का रखना चाहिए। घर घर में तुलसी का विवाह, घर घर में वैष्णव का, साधु संतों का सम्मान होना चाहिए। इस तरह से रह करके जिस घर में भगवत उपासना नहीं होती, वो श्मशान भूमि कहा गया। यहाँ पर संतों का आदर नहीं है, संत माने ये संन्यास लेने वाले ही नहीं। यदि गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी, जैसे महाराज जनक थे, अभी भी हमारे कलयुग में कितने लाखों संत गोपियां देखिए घर की स्त्री हैं। इसी गृहस्थ में भी यदि भगवान का भजन करने वाला, शुद्ध श्रद्धा वाला, अपने माता पिता का आदर करने वाला, गुरुजनों का आदर करने वाला, सर्वोपरि भगवान में विश्वास रखने वाला यदि होगा, तो उसका घर सोने का बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। पश्चात सभ्यता की तरफ में मत दौड़ो, विशेष करके हमारी लड़कियां कन्याएं उधर में मत दौड़ो, बाल मत छंटवाओ, कुत्ते जैसा झबरा ऐसा मत बनाओ, अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानो, तब भगवत भजन तो बहुत ऊंची बात है। अभी से हिस्ट्री का आदत मत लगाओ, शराब मत पीवो, धूम्रपान मत करो। आजकल विदेशों में तंबाकू का नशा और ये क्या ड्रग, न जाने क्या क्या नशीली चीजें निकल रही हैं, खबरदार उसके तरफ में मत जाना। बच्चे लोग भी पान का मसाला न खाएं, लड़कियां तो इसे बहुत दूर रहें। माता पिता जो भी सुन करके वर जिसको शादी देते हैं उनके साथ में चुपचाप शादी करो, नहीं तो जीवन बिगड़ जाएगा। दो दिन का प्रेम स्थायी नहीं होता। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए समाज को बनाते हुए हम समाज के निर्माता हैं, आप लोग समाज के निर्माता हैं। आप लोग यदि अनदेखा करेंगे तो समाज भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए ऐसा सब हुआ है। यदि आप दूसरे को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं तो पहले उसका पालन कीजिए। लड़की स्त्रियां भी यदि अपने अपनी बहू को कुछ शिक्षा देना चाहती हैं, लड़कियों को, अपने आप पहले सीखें। स्त्री और पुरुष सदा काल से दोनों एक गाड़ी के दो चक्के हैं। आजकल स्त्रियां स्वतंत्रता मांग रही हैं, किसी की स्वतंत्रता मांग रही हैं, पुरुष लोग अलग से स्वतंत्रता चाह रहे हैं। किस लिए? दोनों मिलकर के गाड़ी नहीं चला सकते। आजकल संसदों में उठ रही है 33% हमको चाहिए। क्या 33%? पुरुषों को क्या जरूरत है 100% की? वो कहती है 100% उनको दे ना दे। ये सबके झगड़े बखेड़े में आप लोग ना जाइए, नहीं तो शांति दूर हो जाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति जैसी है जैसे सीता जी के, अभी देखो कृष्ण का, कृष्ण की प्रिया जी राधा जी हैं। जरूरत पड़ने पर कृष्ण राधा जी के चरणों में अपने मस्तक को दे देते हैं, कहते हैं कि हमारा अपराध होगा, क्षमा करेंगे। ऐसा कोई आराम भी नहीं कर सकते। सीता जी के पैर में यदि कांटा गड़ गया, राम निकालने जाएंगे, सीता जी नहीं निकालने देंगे, राम भी नहीं निकालेंगे, मर्यादा की हानि होगी। किंतु मर्यादा को कहां, लाख से लाखों को लाखों कोस दूर मारकर कृष्ण गोपियों के चरण में गिरती हैं। यशोदा मैया प्रेम से कृष्ण के कान को मेटती हैं, उनको बांध देती हैं परब्रह्म को, जिसका आदि नहीं, अंत नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, इसका कुछ नहीं। और उसको यशोदा मैया पुत्र जैसा स्नेह कर उसे बांध देती है, इसका नाम भक्त। ऐसे हमारे भारतवर्ष के लोग यदि बने, एक एक पैसे के लिए घूस, आज ऐसी कोई भी हमारी सरकार का या जैसी कोई भी है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर घूस नहीं। किंतु घूस लेने वाले कौन है? हमारे समाज के ही तो, हमारे भाई लोग, हमारे पिता लोग, हमारे चाचा लोग, यही तो हैं, दूसरे कौन है? ये समाज का कैसे कल्याण होगा जहां पर एक एक बात के लिए घूस है? मैया कहेगी बेटा घूस ले आना, मैं तो घर नहीं भरतेगा। पत्नी कहेगी ये तुम क्या कमाता है जो पैसा नहीं लाता, और लोग तो कितने पैसे बटोर रहे हैं। ये नहीं शिक्षा देंगे, ये नहीं कहेंगे घूस मत लेना, हम लोग भूखे खाएंगे, साग खा करके जीवन निर्वाह कर रहे हैं, सूखी रोटी खाएंगे जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जान करके, भगवान को जान करके जगत से चला जाना है। खाने पीने मौज करने के लिए हम नहीं आए हैं। इसलिए इन सब बातों पर विचार करके गहराई से आज बूढ़े लोग, जो कि आज अपनी नौजवानी में जब तक काम करते थे लाखों रुपया करते थे, घर का परिवार इत्यादि करते थे, उनके लिए जी जान लड़ा देते थे, आज वही पिता घर में असहाय बैठे हैं, उनका बेटा पानी देने के लिए तैयार है, उनकी बहू देने के लिए तैयार। क्यों? उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की थी कि नहीं, जरा देखो। इसलिए आप लोग सचेत रहेंगे, और यदि सब कुछ करके भी, माता पिता का आदर करके भी, पत्नी का, पति का होने पर भी यदि भगवत भजन नहीं हुआ तो भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि पिता के पिता के परम पिता के भी पिता भगवान है, उन्हीं से जगत विश्व समझता है। इस चीज को समझो, माता के गर्भ में किसने पालन किया? लोग कहेंगे जैसे माता पिता ने जन्म दिया, तो तुम्हारे माता पिता ने यदि जन्म ही दिया तो तो 50 वर्ष के बाद में 60 वर्ष के बाद में तो है ना, तो है तो अब बच्चा दो चार दे दे तो नहीं दे। जिस समय स्त्रियों को संतान होती है उस समय उनके दूध आ जाता है, और समय क्यों नहीं आता? इसलिए समझो ये सबके प्रभु कृष्ण है, भगवान समस्त भगवानों के भी भगवान वो कृष्ण हैं। और कलयुग में एक नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं। वाल्मीकि रामायण जब बना तो उसमें 1,00,000 श्लोक, सभी देवता दानव और देव ये असुर लोग लड़ने लगे। देवता कहते हैं मैं लूंगा, मनुष्य कहने लिए मैं लूंगा, दैत्य दानव कहने लिए मैं लूंगा। इतने में शंकर जी पधारे, जगत के गुरु शंकर जी हैं। उन्होंने कहा कि क्यों लड़ते हो? तो ये मैं लूंगा तो मैं लूंगा तो मैं लूंगा, क्यों? उसके कारण से जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा। शंकर जी ने कहा लड़ो मत, मैं बांट देता हूं। विभाग कर दिया, 1,00,000 श्लोक थे, उसमें से 35,000 तीनों को दे दिया। बाकी कितना बचा? 1,000 35,399। 1,000 में फिर से विभाग किए, 333,999 बच गया, एक बच गया। उन्होंने कहा जब एक बच गया है, इस एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 4 चरण में से एक एक चरण सब कुछ बांट दिए। अब रह गया एक चरण, एक चरण में 8 अक्षर होते हैं अनुष्टुप छंद में। अब 8 अक्षरों में से 2-2 अक्षर सबको दे दिए, 6 बच गया। अब कितना रह गया? ये समस्त भागवत का, रामायण का, पुराण का, वेद का सार कृष्ण अय्या राम नाम है, ये समझो। विश्व में जितने प्रकार के साधन हैं, योग तपस्या व्रत होम स्वाध्याय जो सबका सार क्या है? ये भगवान नाम है। इसलिए जो भगवान का नाम करता है उसके सभी साधन हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि एक समस्या है, कोई महिला या पुरुष बड़ी श्रद्धा से वृंदावन गए, उनको श्रद्धा हुई, उन्होंने बाल गोपाल की एक मूर्ति खरीद लाई पूजा करने, किंतु बहू नहीं पूजा करती, बेटे की भी रुचि नहीं है, उनको कहीं जाना होता है या तो अपने साथ ले जाएं, और नहीं तो दूसरा कोई उसकी पूजा नहीं करेगा। और जब विशेष करके बूढ़े होकर के जब मरने लगे या मरने लगे तब क्या होगा? इसलिए कलिकाल के लिए ये सब चीजें संभव नहीं है। हरिनाम आपके साथ कोई डकैती करेगा? हरिनाम का हरे कृष्ण कह रहे हैं, कोई डकैती करेगा? आपका कोई छीन लेगा उपासना आराधना? किसी तरह से इसकी हानि नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते ऑफिस में जा चलते भी, वहां पर बैठ करके भी, चलते हुए व्यक्ति करते हुए भी भगवान का नाम करते हैं। ये नाम की इतनी बड़ी बात है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने लाखों करोड़ों वर्ष पहले कलि संतरणों पर निश्चित का याद हरि नाम लेकर के जगत में प्रचार किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप लोग सब कुछ कीजिए, दूसरों की बुराई मत कीजिए, दूसरों की निंदा न कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए यदि योग्य कुछ है, और हरि नाम कीजिए। इस पर भी यदि कुछ नहीं होता है, शास्त्र गारंटी है, हम लोग आपके गारंटी हैं। देखिए आपसे जितने जितने कष्ट हैं दुख हैं सब दूर हो जाते हैं कि नहीं? आज ही से घर में जाकर के आ रहे हैं, अब से कीर्तन करेंगे, जरा करो महामंत्र का या झांझ करताल कम बजाना, आवाज निकलेगी सब।
मधुर मधुर निवेदनम
की वंशाएं पूर्ण कर ली, किंतु उसका भी सार ये मंत्र हरि नाम है, कृष्ण नाम मधुर नाम है, इसे सबका कल्याण। यदि श्रद्धा से करे तो कोई बात ही क्या, और श्रद्धा पूर्वक भी कोई नाम हरि नाम करता है, पैर फिसल जाते हैं भी नाम कर लेता है, दुर्गंध आने पर राम राम यदि कोई कर देता है, किसी को चिढ़ाने में राम राम कर देता है, अभी उसका परम कल्याण हो जाए। का नाम जैसे कृष्ण, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राम इत्यादि। कभी कभी भगवान का लीलाओं का कीर्तन होता है, जैसे यशोदा जी ने कृष्ण काल जैसे बांधा, उन सब की लीलाएं हैं। रामचंद्र जी कोई कार्य कर रहे हैं, उनकी लीलाएं हैं। पीछे करके कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं, इनका भी कीर्तन होता है, उनके गुण का भी कीर्तन होता है। सभी श्रेष्ठ है, इसलिए किंतु सब नामों में नाम श्रेष्ठ होने पर भी उनकी गुण और लीलाएं भी हैं। जैसे यशोदा जी के घर में कृष्ण लाला ने जन्म लिया तो क्या भयो,
श्याम।